गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। तीन श्लोक पढ़ेंगे, 10, 11, 12। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते सचराचरम हेतुनानेन कांतेय, हेतुनानेन कांतेय जगद्वी परिवर्तते, जगद्वी परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मानुषीं तनुमाश्रितं, मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः, परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्, मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो, मोघाशामोघकर् मोघज्ञानविचेतसः, मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीम् आसुरीम् चैव, राक्षसीम् आसुरीम् चैव प्रकृतिम् मोहिनीम् श्रिताः, प्रकृतिम् मोहिनी श्रिताः। हरिः ॐ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः, मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कांतेय जगत विपरिवर्तते। कांतेय अर्जुन से है संबंध, मया मुझ अध्यक्षेण अधिष्ठाता के सका से। ये महाराज जी की बात हो रही थी, किसी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी हम चाहते हैं कि हमारी कमेटी के अध्यक्ष आप बने। देखिए हम कमेटी के अध्यक्ष बनना कभी रुचिकर नहीं करते हैं। महाराज जी आप वरिष्ठ हैं। अरे सुनो भी नारायण, ये कमेटी क्या होती है? कम मति के लोग जमा हो जाएं और कम भक्ति पैदा करें, ये तो कमेटी होती है। अरे नारायण समिति करो जहां सम मति वाले हों, परस्पर प्रेम हो, सद्भाव हो और संस्था का कल्याण करने की सोचे। तो समिति का प्रश्न है तो जरूर सोचेंगे। नारायण एक कमिटी में हमें मत दबाओ। मया अध्यक्षेण, वो कौन सी समिति है? समिति नहीं है, सृष्टि के अध्यक्ष है नारायण। मया अध्यक्षेण प्रकृति है सचराचरम, चराचर सहित सर्व जगत को सूयते रचती है अनेन इस हेतु ना जगत। ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार विपरिवर्तते, यह संसार आवागमन रूप चक्र में भ्रमण करता है, घूमता है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः। ये संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो ये तो आ गया, तो नहीं है, ये अजानन्तः है। विसर्ग का लोप हो जाने से उसको वहां अजानन्तो कहा, वैसे ये अजानंतः है, इसलिए लिखने के लिए तो ये लिखना पड़ेगा किंतु पढ़ने के लिए अजानंतः ये ऐसा पढ़ना चाहिए। परम भावम अजानंतः मम भूतम या भूत महेश्वरम। भूत महेश्वरम संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप महाईश्वर। मम मेरे परम भावम परम भाव को अभी अजानंतः न जानने वाले मूढ़ाहा मूढ़ लोग मानुषिम मनुष्य का तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाले मां मुझ परमात्मा को अवजानंती तुच्छ समझते हैं। नारायण कृष्ण भगवान हमारे सामने आ जाए तो लोग बोलेंगे अच्छा ड्रेस यू लुक वेरी फाइन ये फैंसी ड्रेस में जा रहा है क्या कि शूटिंग हो रहा है कहीं अरे मैं कृष्ण हूं अरे तू कृष्ण हे ये कृष्ण है वैसा हो जाएगा। मोघाशा मोघ कर्माण मोघाशा मोघ कर्माण अगेन देखिए ध्यान दें मोघाशा वृषा आशा मोघ मने मिथ्या वृथा मोघ कर्माण वृथा कर्म मोघ ज्ञान वृथा ज्ञान वाले विचेतसह अज्ञानी जन राक्षसीम राक्षसों के च और आसुरीम असुरों के जैसे मोहिनीम मोहिनी करने वाले तामसी प्रकृति में प्रकृतिम स्वभाव को एव ही सीता धारण किए हुए हैं। हम इनकी व्याख्या करने के पहले एक थोड़ा अवलोकन करना पड़ेगा इस वस्तु विषय का कि अगर आपके हाथ में गीता जी हैं तो सातवें अध्याय में 24वें श्लोक को थोड़ा देख लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारा ये मूढ़ा भूत महेश्वरम सातवें अध्याय का 24वां श्लोक देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। ये कह दिया कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतः। यहां पर भी परम भाव मजानंत यहां पर भी है परम भाव मजानंतः मम अव्ययम अनुत्तमम। ये देखिए परम भाव मजानंत अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम क्या बता मन्यन्ते माम अबुद्धय अबुद्ध मने क्या होता है बुद्धिहीन पुरुष अनुत्तमम अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं भगवान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं अव्ययम अविनाशी है। परम भावम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूं ऐसे प्रभाव को परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं है आने का नहीं है जाने का नहीं है प्रकट होने का नहीं है फिर भी अजानंत तत्व से नहीं जानते वो अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे माम मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को व्यक्तिम व्यक्ति भाव को आपन्नम प्राप्त हुआ मानते हैं। अरे कौन है ये जिसने पहाड़ बनाए जिसने समुद्र बनाए जिसने नदियां बनाई जिसने मेघ धनुष जितने कमल पुष्प भ्रमर के गुंजन कोयल की कूक मयूर के नर्तन एक से सुंदर एक ये तितलियों के रंग आप देखें और बारिश में एक छोटी सी वो कीड़ा थी लाल मखमल वाली आज पता नहीं कितना साल हो गया हमने देखी नहीं उसको कम से कम 25 साल से तो देखा नहीं है। छोटे होते थे बोलते थे गोकुल गाय इतना छोटा मखमल के मापे वो कैसे बनाता है तो उसको भी लोग मिथ्या कहते हैं। और यहां पर भी जो क्या कहा कि राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम ये जो प्रकृति है उसको थोड़ा 16वें अध्याय में 7 से 21 तक थोड़ा विहंगावलोकन करना चाहिए 7 से 21 की क्या कहना चाहते हैं नारायण। तो हमारे 16वां अध्याय में 7 से चलना 21 तक बहुत ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे मगर फिर भी देखना चाहिए कि क्या हेतु क्या है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरा सुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहूरनीश्वरम అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామ హేతుకం ఏతాం దృష్టిమవష్టవ్య నష్టాత్మానుల్ప బుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్ర కర్మాణ క్షయాయ జగతో హితా కామమాశ్రిత్య దుస్ఫూరం దంభమాన మదాన్వితః మోహాద్ గ్రహీత్వా సద్గ్రాహాత్ ప్రవర్తంతే సుశివ్రతః. ऐसे कह दिए तो कहना यही चाहते हैं कि जो तमाम राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, तो यही बात इस कथन में कृष्ण है बहुत महत्वपूर्ण विचार, विशेष रूप से हमारी साधना के लिए. और जो विचार है वो तो गहरा भी है और ऊंचा भी है. ध्यान दिए दो शब्द, क्योंकि हिमालय ऊंचा होता है गहरा नहीं होता है, और पैसिफिक है वो गहरा होता है ऊंचा नहीं होता है. किंतु हमारे महाराज जी हैं, उनकी भक्ति की ऊंचाई जो थी और ज्ञान की जो गहनता थी, ये महाराज जी को हमने बड़भागी होकर के देखा बिरला जी के यहां कलकत्ते में अलीपुर में. वो राजसूय यज्ञ का हमने वर्णन पढ़ा है कि स्तंभ कैसे थे, तो ऐसे बड़े बड़े स्तंभ, ये कितना टेबल चौड़ा है, ऐसे स्तंभ जैसे मणिमाणिक से मंडित हो ऐसे. पर कलकत्ते में वो सजाने वाले भी लोग भी बढ़िया होते हैं, ऐसे ऐसा 24 स्तंभ है अद्भुत, उनमें गुम्मट के जैसे उसमें अच्छा एक राज सिंहासन ऊंचा करके. तो महाराज जी रोज रात में एक घंटा श्रीमद भागवत जी, और इन दोनों में वो ऐसे छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर माइक कितना 100-150 लोग रखते थे, किंतु अलिप्त, बिल्कुल अलिप्त. महाराज जी का अलिप्त मल्ले से महाराज जी द्रांगद्रा बहुत जाते थे द्रांगद्रा, भावनगर भी बहुत आते थे. मैंने देखा है महाराज जी को एक बार, पहले हम कहीं गए तो 20-20 दिन रुकते थे. कुछ भी बोलते हैं, छोटा शहर है तो रोज अखबार में छपता है. महाराज जी का आगमन हुआ, बड़ी फोटो छपी, उनको उद्घाटन करना था, किंतु नीचे लिख दिया परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, ऐसा लिख दिया. रोज अखबार वालों को अध्यात्मानंद है तो लिख दिया. उन दिनों में हवाई जहाज के एयरपोर्ट में जाने की कोई मुश्किल नहीं थी, तो जैसे सब लोग गए हम भी गए, पूज्य भाव है, फूलमाला सब लेकर तुलसी पत्ता लेकर के दंडवत किया. तो किसी ने महाराज जी को अखबार दिखाया, महाराज जी उद्घाटन तो आप कर रहे हैं, छवि तो आपकी छपी है और नाम इनका लिखा है, ऐसे बोले, कड़क बोला, इनका नाम दुख थे. महाराज जी बोलते, ओ जी अध्यात्म आनंद नहीं हो तो अखंड आनंद हो ही नहीं सकता है. देखिए हम कभी नहीं भूलेंगे इनका प्यार जो है. विपुल में गए तो इतना प्यार देते थे, बहुत. हमने एक साल बीच में दाढ़ी बढ़ा ली तो ये हाथ यहां करके बोलते थे, किमर्थम परिवर्तनम कृतम, ऐसे बोलते थे, ये परिवर्तन क्यों किया. बहुत प्यार. ये क्यों होता है प्यार, क्योंकि वो बचपन के बच्चे के माफक सरलता है. क्या कहा यहां पर, कि ज्ञान की गहराई है, भक्ति की ऊंचाई है, वो छिछला किधर भी नहीं है. तो यहां जो ये तीन श्लोक भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा जगत का सृजन करता हो तो कैसे करता है, क्या वैसे ही जैसे कुम्हार अपने चाक पर घड़ा बनाता है, क्या ऐसा करता है क्या, या मूर्तिकार एक छेनी हथौड़ी लेकर के टीपता है, ऐसा करता है क्या, या कवि शब्दों का संयोजन करता है, गीत रचता है, परमात्मा का सृजन किस विधि का है. ये बड़ी सुंदर बात कही है, किस विधि का ये है. मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, अर्जुन मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है. कैसे रचती है, देखिए इसमें चार बात कही गई है. एक बात बड़ी गहरी कही गई है कि जो लोग विज्ञान को थोड़ा समझते हैं उन्हें समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि विज्ञान मानता है कि कुछ ऐसा सृजन भी है जब करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, केवल मौजूदगी चाहिए, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलाने से क्या बनता है? जल। दोनों मिलाने से जल नहीं बनेगा। पानी का विभाजन करें तो उसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलेंगे, किंतु इन दोनों को मिलाने से नहीं पानी बनेगा जब तक बिजली की उपस्थिति ना हो। बिजली की उपस्थिति आवश्यक है। बिजली कुछ नहीं करे, उसकी केवल उपस्थिति होना चाहिए। और जब पानी का पृथक्करण करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलता है, बिजली नहीं निकलती है, कि बिजली अंदर गई ही नहीं, बिजली की केवल उपस्थिति है। भगवान वो घड़े को जैसे कुम्हार बनाता है ऐसे नहीं बनाता है, जैसे छीनी लेकर के मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ऐसे नहीं बनाता है, और इधर की उधर की तुक करके जैसे कविता कवि करता है ऐसे नहीं करता है, चित्रकार इधर से उधर से देख करके चित्र बनाता ऐसा नहीं। भगवान के संकल्प मात्र भी की आवश्यकता नहीं है, उपस्थिति मात्र से सृष्टि की रचना होती है। ये बात बहुत गहरी है, थोड़ा उसको समझना चाहिए। एक पिताजी है, पिताजी है वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना कहीं बाहर गए, तो जब वापस आएंगे तो उसको बेटे को बोलना पड़ता है कि मुझे प्रणाम करो, कि वो अपने आप करता है? ए ऐसा करना पड़ता है क्या? अगर करना पड़े तो पिता ही क्या होगा। और गुरुजी जब क्लासरूम में आते हैं, दिस क्लास टीचर, तो बच्चों को खड़ा होने के लिए हे हम आ गए खड़े हो, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? नहीं, वो स्वयं से होता है। पिता के आगमन पर पुत्र स्वयं प्रणाम करता है। ये एक प्रणाली का नहीं, एक परंपरा नहीं, एक संस्कृति है। हाँ, भारत की ही है, भारत के बाहर नहीं है। हाँ। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में रचना का सिलसिला शुरू होता है, मैं बनाता नहीं, मेरा कृत्य नहीं, मेरी उपस्थिति मात्र से, मेरे मौजूद होने से ही जीवन चलता है। सूरज जब निकलता है तो कलियां खिलती हैं, सूरज निकलने पर पक्षी कलरव करते हैं, ऐसा करके सूरज निकलने पर धूप चेहरे पे आ गई तो लोग हा हू करके उठते हैं। अब मुझे कहें क्या सूरज है हर कली के ऊपर जाता है क्या? सूरज को हर कली के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, हर घोंसले में जाकर चिड़िया को चहकने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, गुकुल निवास मावी ने तुम्हारा बेडरूम हाय गुड मॉर्निंग उठो यो तो अपने कहे ना कहे, वो तो अपने से भाई, वो एक सूर्य जो है ये पूर्वांचल में प्रकट होते होते हवा में ही एक ऐसा आभास होता है, हवा में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, हवा में ही एक खुशनुमा हो जाती है, हवा में एक चेतना आ जाती है, हवा में एक शक्ति उत्पन्न होती है, हवा में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हवा में एक चेतना उत्पन्न होती है, हवा में एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है, अपने से कलियां खिलती है, अपने से चिड़िया चहकती है, अपने से लोग बिस्तर छोड़ देते हैं। सूर्य की केवल उपस्थिति मात्र से ये सूर्य को हर घर में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलते हैं कैटलिटिक एजेंट कहते हैं। वो एजेंट हैज गॉट नो बिजनेस टू गो टू हाउस एंड डोर टू डोर, इज नोइंग व्हाट्स हैपनिंग, दैट्स ऑल। ईमेल भेजते हैं ना तो हर आदमी को एक 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 करने का जरूरत नहीं है। 2040 करके एक क्लिक करो सबको चला जाएगा। एक क्लिक करना पड़ता है, कृष्ण को तो यह भी नहीं करना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे कि कृष्ण का जो सूत्र है, विज्ञान अधैर्य नहीं दिखाएगा, वह जरूरी बात है। जगत को हम कितना ही खोजें, परमात्मा को नहीं खोज पाएंगे। जैसे कि हमने कल कहा था, हमें बड़ा विचित्र विचित्र शौक है, वो विशेष रूप से ये पोस्टमार्टम देखने के लिए बड़ी खुशी होती है। तो ये पोस्टमार्टम करने पर आपको सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, आपका सर्वाइकल वर्टेब्राज है, आपका लंबर है, आपके हार्ट है, लंग्स है, ये तमाम जो है, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्प्लीन, एड्रिनल, वो तमाम दिखेंगे। मन दिखता नहीं किधर भी, मन किधर बताओ, आत्मा भी नहीं। उपनिषद वाले कितना ढोल बजाएं, अंगुष्ठ मात्र एव, वो अंगूठी के समान है, हृदयाकाश में बैठे हुए हैं, हृदय है उसमें, देखे तो चार चेम्बर होता है, कोई अंगूठा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। तो जिसको हम ढूंढना चाहते हैं वो तो अंदर है नहीं, मगर उसके बिना कुछ होता नहीं है। शरीर में जब प्राण होता है, हम कहते हैं, तो आंखें कार्य करती हैं। ये आंखों ने कहा, बिना हमारे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। हम चली जाती हैं, लोगों ने कहा अच्छा है जाओ हफ्ते भर की छुट्टी, तो देखू नहीं ने दाजू नहीं, देखना नहीं, जलना नहीं, शांति हो गई। कान बोले हम छुट्टी में जाएंगे, अच्छा जाओ, सुनना नहीं, क्लेश नहीं। जीव ने कहा हम जाएंगे, बहुत अच्छा हो गया, बड़बड़ 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 शांत हो गया। तमाम लोग के पीछे इस बड़े बिजनेस में एक और पार्टनर भी, इसका नाम है प्राणलाल एंड कंपनी। वो जो प्राणलाल एंड कंपनी ने कहा, अब थोड़ा हम भी थोड़ा कूलर उठाया उन्होंने, प्राणलाल कोलर उठा करके थोड़ा हम भी थोड़ा घूम के आए। वो कोलर उठाया, प्राणलाल जी खड़े हुए नहीं, साथ में अबड़ा 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 हो गया। जीव लड़खड़ा गई, वो पांव गरबा करने लग गए, आंख में कुछ दिखता नहीं, काला पीला गोरा हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे प्राणलाल जा रहे हैं छुट्टी में, मत जाओ यार। ये जो प्राण है हमारे शरीर में नहीं दिखते हुए भी प्राण का कार्य हम देख रहे। प्राण आया, प्राण गया, तो कहां से आया, कहां गया? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, किंतु वो अव्यक्त होते हुए भी उसकी सत्ता से ही समग्र सृष्टि है। ये कलियों का खिलना, ये भंवरों का गुंजन, हाँ, ये हरी हरी धूप, ये जो घोड़े इनकी हिनाट, ये सुंदर से हिरणों की चपल चाल, और ये हिरणों के ये इतने सुंदर ये चमड़ी है, उसमें रंग, मोर का इतना सुंदर रंग, ये कैसे होता है? अव्यक्त होते हुए भी उसके अंदर में वो क्रिएटर की तरह नहीं है, वो सृष्टा की तरह नहीं है, वो उपस्थिति मात्र, इट्स प्रेजेंस इटसेल्फ इज इनफ, कैटलिटिक एजेंट की तरह जगत को निर्मित। यदि यह ठीक है तो विज्ञान उसी दिन परमात्मा को अनुभव कर पाएगा जिस दिन विज्ञान सृजन की प्रक्रिया में मौजूद हो। ये सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होना एक विशेष बात है। देखिए, जब सृजन होता है कहीं पर भी, कोई भी सृजन होता है, तो वो सृजन परमात्मा की शक्ति के अतिरिक्त नहीं हो सकता है। ये जो सिनेमा के बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, या तो हमारे क्रिकेट के पंडित लोग हैं, गायक लोग हैं, तो इनमें परमात्मा की विशेष शक्ति होने से ही संभव है। हम कहते हैं कि एक श्लोक ठीक से नहीं पढ़ने वाले, किसी का लिखा हुआ किताब यहां रख करके बोलने वाले लोगों के सामने लाख डेढ़ लाख लोग बैठते हैं। कैसे बैठते? वो बड़ी पब्लिसिटी करते, इसलिए ऐसा नहीं है। कुछ भी करे वो परमात्मा की कृपा का भाजन के प्राप्त है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है ना। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी बात संभव नहीं है। हमारे यहां अहमदाबाद में एक रसोया रहा, रसोया मारवाड़ी रसोया था, डूंगा जी बोलते थे लोग उसको, बड़ा महंगा था, मगर उसके बुला दो 200 आदमी आ जाए तो आपको पता चलेगा नहीं, वो ठीक करके सबको रख देगा। हाँ, मगर दाल में वो तो गुड़ कोकम नहीं डालता है, काजू अखरोट डालता है, बादाम डालता है। हाँ, और बैंगन की सब्जी बनाता है तो उसमें भी काजू है, पिस्ता है, बादाम डालता है, अखरोट डालता है, वो ऐसा रॉयल आदमी। आपके लिए पैसा तो आपने देना है, फिर मैं क्यों बढ़िया ना बनाऊं। उन्होंने सोचा मैं अपने गांव में एक यज्ञ करूं। बहुत साल तक अहमदाबाद में रहने के बाद में 40 साल के बाद में वो गए, उनके पास में कुछ नहीं महाराज, वो एक तवेथा लेकर के आते थे, अपनी टीम को लेकर आते थे, कपड़े इतने गंदे हैं क्या बैठाएंगे उसको, मगर वो खाना जो बनाएंगे वो 5 स्टार 7 स्टार क्या खिलाएंगे, इतना बढ़िया है। उन्होंने अपने यजमानों से कहा कि हम चाहते हैं हमारे गांव में यज्ञ करें, मैं 40 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, आप सब लोग भी आए। आप सोचेंगे 3.5-4 करोड़ रुपए का खर्चा लोगों ने मिलकर किया। वो बोले मैं खाना बना के दे दूंगा सबका, खाना बनाने की जिम्मेदारी में राशन आप लाइएगा, मंडप आप डालिए, यज्ञ भी आप, मगर यज्ञ मेरे गांव में होना चाहिए। लोग देखिए इसकी प्रतिष्ठा कैसे है, कैसे है, इसके संकल्प मात्र से, मात्र डूंगा जी। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जंतुनाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्तम ततो विप्रता। ये जंतुनाम नर जन्म, हम लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं अध्यात्मनंद स्वामी जी है, राजू नारायण है, उमा माता जी है, गिरीश भाई है, हम क्या अपने आप को समझते हैं भाई, मुझे बात बताओ। वो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वो जैसे कि विक्रम के पास में, आदित्य जो विक्रम रहे तो उनके पास में एक सेवक था, उसका नाम था वैताल। तो वैताल जो है उसके माता पिता बड़े वृद्ध थे, उनके पास संतान नहीं थी, ओम नमः शिवाय बहुत जप करते थे। एक गांव के सुनकार मंदिर में वहां एक दिन एक मच्छीमार आया, टोकरी भर के मछलियां लाया और शिवजी के सामने खड़ा होकर बोलता है महाराज हमको संतान चाहिए, संतान दो। ऐसा सोच करके मछली का जो टोकरी है शिवजी पर डाल दिए, फिर बोले महाराज संतान। तो शिवजी प्रकट हुए, वरम ब्रूही क्या चाहिए, बोले संतान मांग रहा हूं, संतान दो। तू मंदिर में आकर 5 बार बोला है, जा तेरे को 5 दिया जा। वो वृद्ध दंपति ब्राह्मण है, उन्होंने शिवजी को पकड़ा, महाराज हम बूढ़े हो गए यहां नमः शिवाय बोलते हुए, हमको एक नहीं और ये टोकरी मछली लाया तो 5। बोले आओ। शिवजी करुणा निधान थे, बोले बाबा। उन्होंने उनके हाथ पकड़ के मंदिर के पीछे ले गए, वहां गाय का पुराना सड़ा हुआ गोबर पड़ा था, उसको उठा के दिखाया। नीचे वो व्हाइट एंट्स होते ना, सफेद सफेद चींटियां ढेरों भाग रही थी। बोले इसमें से 5 दिए, तुमको चाहिए क्या? हम सोचते हैं कि प्रकृति में ये परमात्मा के यहां क्या कुछ होता है। धारावी में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या ऐसे रहते हैं, तो वैसे ही रहते हैं, अपने अपने कर्मों से ऐसे आते हैं। जिसके अस्तित्व के लिए, उनका अस्तित्व में जन्म हुआ कि मृत्यु हुई किसी को कुछ पता नहीं। जैसे बारिश के दिनों में एकदम बारीक बारीक मच्छर से भी बहुत बारीक बारीक मसियां हो जाती है, यहां यहां बैठती है, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श करने के पहले वो उनका प्रागट्य और निर्माण साथ साथ में होता है। तो ये कैसे होता है जीवों का, तुम और तप करो। हम अपने आप को समझते हैं अति विशिष्ट क्षमता संपन्न, किंतु नहीं है, वो एक जंतु। मुझे पता नहीं कि आपको अभी अपना देहात याद है कि नहीं है, जिसमें वो पुराने मैंगलोर टाइल के नहीं किंतु वो गोल गोल ये नड़िया गोल गोल टाइल ऐसे राउंड राउंड, और उसमें कहीं छेद हो जाए तो उसके अंदर से वो अंधेरा होता है, एक ही प्रवेश, दाएं बाएं कोई खिड़की नहीं, अंदर के अंदर कमरे के कमरे के पीछे कमरे, एक साथ में 5 कमरे, बड़े बड़े कमरे। तो उसमें से वो जो सूर्य की रोशनी आती है, उस रोशनी में कमरे में रजकण देखें क्या, वो जो रजकण रहते हैं, वो रजकण एक आप हैं, एक मैं हूं। हमें अहंकार किस चीज का करना है,
जंतुनाम नर जन्म दुर्लभ मत। किंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष में कोई विशिष्ट क्षमता संपन्न चेतना जागृत होती है तो ईश्वर की कृपा और इच्छा के अतिरिक्त नहीं होती है। श्री श्री रविशंकर जी हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उन्होंने एक सभा बुलाई दिल्ली में, प्राइवेट सभा जिसमें बाहर से कोई नहीं, मीडिया कोई नहीं। क्या हो रही है कि ये कन्याओं की जो भ्रूण हत्या हो रही है उसके बारे में महात्माओं को अपनी सभाओं में बोलना चाहिए। महात्मा लोग बोले बार बार, तो बड़े बड़े धुरंधर 250 इतने महात्माओं को बुलाए, दक्षिण भारत से बुलाए, कहां से बुलाए। मुझे कहा कि स्वामी जी आप क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने हमको सबको बुलाया, किंतु मुरारी बापू को बुलाना चाहिए था, रमेश भाई ओझा को बुलाना चाहिए था, आसाराम बापू को भी बुलाना चाहिए था, और विशेष रूप से ये आपको ऐश्वर्या राय को बुलाना चाहिए था, अमिताभ बच्चन को बुलाना चाहिए था, और सचिन तेंदुलकर को तो जरूर बुलाना चाहिए था, और धोनी को इनका सबका आह्वान करना चाहिए था। तो लोग बोलते हैं क्यों। मैंने कहा इनकी बात को लोग मानते हैं, बाबा जी लोग को कौन सुनता है। वो यहां इतने सारे संत महात्मा हैं क्योंकि मैंने अपने गुरु के साथ में भ्रमण बहुत किया है, मैं सबको जानता हूं, सब अपने अपने स्थान पर बड़े ही विशिष्ट क्षमता संपन्न पूजनीय महात्मा है, किंतु ये बड़े आचार्य महामंडलेश्वर के पास में जाओ तो सामने चार लोग भी बैठे नहीं रहते। वो अपने कक्ष में रहेंगे कुछ नहीं, मगर आपको 2 घंटा बार बैठा देंगे, तब जाकर के फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है सोचेंगे बताएंगे, मिलते रहना, क्या होता है। एक व्यक्ति उनके सामने नहीं है, और जिन जिन के नाम मैंने गुनाए उनका नाम सुनने पे करोड़ों लोग जमा हो जाते हैं, तो उनको बोलना चाहिए। क्या बात है कि जो लोग हैं वह इतने सुप्रसिद्ध हैं, तो सुप्रसिद्ध होने के लिए उनके भीतर परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की चेतना, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ये बख्शीश इतनी तीव्र है कि वह अति विशिष्ट क्षमता संपन्न जीवन यापन कर रहे हैं। कृष्ण ने कितना श्रृंगार किया है, कितना अद्भुत जीवन यापन किया है, ऐसे राम जी ने नहीं किया। राम के जीवन में त्याग रहा है, आभूषण नहीं रहे, दुख रहा है। एक रामायण भी आई, एक महाभारत भी आया, किंतु रामायण में बहुत लोग बैठ के देखते थे। कैसे देखते थे, वो दुकान पूरी खुली पड़ी है, बाजार खुला पड़ा हुआ है, उस समय कोई शादियां नहीं होती थी। हमने बहुत सभाएं की हैं, किंतु सभाओं के बीच में, रोटरी की लाइन की कैसी क्या बड़ी मीटिंगों के बीच में, वो रामायण के समय में क्लोज सर्किट टीवी में वो जाकर के सबको रामायण लिखा जाता था कि सभा के इस समय में रामायण भी दिखाया जाएगा, तो लोग आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। ये कैसे संभव होता है, क्योंकि उनका तप अधिक है, उसमें घी हलवा बनाते हो ना हलवा, तो उसमें हलवा का स्वाद कैसे बनता है, उसमें घी कितना गिरा, घी कैसा गिरा, चीनी कितनी है, केसर कितना है, बादाम कितनी है, पिस्ता कितना है, जायफल डाला कि नहीं, तो ये स्वाद बनता है। जितना मसाला डालो उतना स्वाद बनेगा। ईश्वर की कृपा जितने अधिक उतना ही आपके जीवन में सृजन, ये क्या कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते, तो ये तो कैसे हो सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ऐसे कहा गया कि उन्होंने जो कविताएं लिखी वो कविताएं लिखी नहीं, लिखी गई। ये दोनों शब्द में भेद है, कविता लिखी, कविता लिखी गई उनके द्वारा। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि एक मल्लिक जी उनके साथ में होते थे, ये मल्लिक जी हैं गुरुदयाल मल्लिक जी, तो मलिक जी भी उनके पास में रहते थे, तो मलिक जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है। एक नियम ऐसा बना हुआ, सब लोग जानते थे कि कविवर हैं, कहीं बैठे हैं बात करते करते कर, इनके नेत्र बंद हो गए, एक क्षण दो क्षण तीन क्षण लोग उनको अकेला छोड़ देते थे, उठ करके चले जाते थे। तो ये गुरुदयाल मलिक जी बोले कि मैं छोटा था, मैं सोचता था ये क्या बात, क्या है ऐसा, क्या होता है। बोले कि वो तब जाकर के एक कविता लिख देते हैं, कैसे लिखते हो आंख बंद किया तो क्या संबंध क्या है इसका। मैं एक दिन रहा, खुद वो चाय बना करके लाए, सबको चाय दी, सब लोग चाय पी रहे थे और आकस्मिक उन्होंने चाय को ऐसे रखी जैसे कि बेहोशी में रख रहे हैं। इसको देखते देखते सब लोग उठ करके चले गए। मलिक जी लिखते हैं कि मैं गया किंतु कमरे के बाहर नहीं गया, पर्दे के पीछे खड़ा हो गया, वो मुझे ना देखे, मैं इनको देख लूं क्या हो क्या रहा है, तमाशा क्या है। हमने देखा कि ये रविन्द्रनाथ जी हैं, वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद भी इनके शरीर में कंपन उत्पन्न हुई, देखा इनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, देखा कि वो अपने हाथ हवा में लहरा रहे हैं, देखा कि खड़े होकर के झूम रहे जैसे कि हवा की लहर आती है और डालियां झूमती है, जैसे एक पुष्प खिलता है जैसे सुगंध आती है, ऐसे पूरे वो कोई नहीं था वहां पर, वो अकेले थे, इनके तो नेत्र बंद थे किंतु एहसास था इनके अतिरिक्त तो वहां कुछ घट रहा है, कुछ और शक्ति है, कोई और चेतना है, कोई और क्षमता है, कोई ओजस है, कोई तेजस है, कोई प्राज्ञ है, उसके भीतर में एक आभास, एक किसी के होने का एहसास। मैं भाग भी नहीं सकता था, मैं हिल भी नहीं सकता था, देखा मेरे पांव जमीन से चिपक गए, मेरी ऊर्जा शक्ति है तमाम क्षीण हो गई है, मेरा केवल अस्तित्व था, मैं नहीं था, ऐसा मलिक जी लिखते हैं। मैं चाहते हुए भी बाहर नहीं जा पाता था क्योंकि उस शक्ति के प्रभाव में मैं भी आबद्ध हो गया था। एक नर्तन होता रहा, कोई संगीत नहीं था किंतु संगीत की सुरावलियों की एक इतनी बड़ी आभा थी वहां पर, और धीरे से कवीवर बैठे बैठे जैसे कि कुछ चित्र कर रहे हैं, ऐसे लिखते ही चले गए, लिखते ही चले गए, लिखते ही चले गए, और बस फिर एक बेहोशी में आ गए, एक शांत में गए। धीरे 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 मैंने भी अनुभव किया मेरे पांव जमीन से अब स्पर्श नहीं कर रहे हैं, जमीन के ऊपर मैं ठोस, मैं अपना महसूस कर रहा हूं कि मैं अब जमीन से खड़ा हुआ हूं। और तब मैंने पर्दे से एकदम बाहर चला गया, पर देखा कि कवीवर स्वस्थ हुए तो मैंने दौड़ के आकर के दंडवत प्रणाम किया, आंखों में अश्रु लेकर के कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करता। जब मैंने कहा तभी कवीवर ने कहा, देखो मैंने कुछ नहीं लिखता हूं, कोई शक्ति आ जाती है उस समय मैं मिट जाता हूं, ये ध्यान दे, उस समय मैं मिट जाता हूं, कोई मुझसे लिखवा जाता है तब मैं नहीं होता हूं, कोई मुझसे गायन गवा जाता है, लाख कोशिश करूं कि सुंदर शब्दों को जमाऊं, यदि तुम्हारे संगे केवु न आशे तुम ही अकेला चलो, नाना भाषा नाना मोत नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान, देखिया भारत महा जातिर उत्थान, जग जन मानिबे विस्मय, रहो धरमेते धीर रहो करमेते वीर, रहो उन्नत शीर नाही भय, भूली भेदाभेद ज्ञान हाओ सवे आगुयान, साथे आछे भगवान होवे जय। इतना एक भावपूर्ण, अपने धर्म में धीर बन के रहो, कर्म में वीर बन के रहो, भय नहीं करना क्योंकि भगवान ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, वो एक अनुभूति। तो क्या कहते हैं, मुझसे कोई गवा जाता है, मैं लाख कोशिश करूं कि सुंदर शब्दों को मैं जमा नहीं पाता हूं, तो बंदी तो बन जाती है। राजू बोल रहे थे प्रवचन करने वाले लोग होते महात्मा गंभीरता से बोलते, जो महात्मा नहीं होते ना वो प्रवचन तो अच्छा कर लेते कि तुम मसाला नहीं होता है, तुकबंदी होती है। राजू भी बोल सकता है हाँ कि तुकबंदी है, क्या कहते हैं कि तुकबंदी होती है, लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता है, काव्य का जन्म तो तभी होता है जब मैं मिट जाता हूं, जब मेरा ये जड़ मूल से मैं अपने आप में खो जाता हूं, आई लूज माई सेल्फ, मेरा अपना अस्तित्व नहीं हो। रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस काव्य के क्षण में ईश्वर का उनको एहसास क्या होता है, क्योंकि जगत में कोई भी चीज की सृजन होता है, मैंने क्या कहा सृजन होता है, तो सृजन है द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, जो क्रिएशन होता है, नॉट द क्रिएटेड, क्रिएटेड अलग है वो क्रिएशन अलग है, क्रिएशन सृजन होता है और कोई ने बना के रख दिया है, बना के रखने को क्या हम सृजन कहेंगे ना, वो स्वयंभू नहीं है, उसके पीछे एक ठोस प्रयत्न किया गया, प्रयत्न नहीं है, परमात्मा की इच्छा से जो होता है कभी कभी तो उसकी झलक मिल जाती है। क्या हसे छुपाई क्या कृपानी कुंज तारी, क्या हसे दटाई क्या सुधानी सेर तारी, क्या हसे छुपाई क्या कृपानी कुंज तारी, महफिले मळ्या सहुज त्यान पगली तारी। कितने लोग जमा हो जाएं तो कभी कभी कोई भी ना हो तो वहां जाकर के प्रवेश करके एक भीतर में एक शाता, भीतर में एक आनंद, भीतर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत भीड़ भड़क का हो, ढोल हो, बाजे गाजे बज रहे हो, सुंदरता बड़ी हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हो, लगता है हम कहां फंस गए। क्यों? वहां आडंबर है, वहां दंभ है, छल है, वहां एक निर्माण है, किंतु ईश्वर का अस्तित्व नहीं। ईश्वर के अस्तित्व के बिना कुछ होता ही नहीं है, किंतु एक जो ईश्वर की स्वयंभू जो प्रागट्य है ये बहुत जरूरी है। देखिए, मां के गर्भ में एक बच्चा आता है, जब स्त्री गर्भधारण कर लेती है उसके रूप में जो निखार आता है वो इतना सौंदर्य बाकी कभी नहीं होता है। क्यों? कि उसके भीतर एक सृजन हो रहा है। देखिए, ये बहुत सुंदर स्पष्ट बात है, ध्यान देना। पुरुष के शरीर में कुछ अंदर सृजन नहीं होता है, इसलिए पुरुष बाहर सृजन करने में सक्षम है। दुनिया भर में आप कितनी महिलाओं के बारे में चिंतन कर लें, महिलाओं के भीतर सृजन होता है, इसलिए महिलाओं के द्वारा बाहर सृजन नहीं होता है। तुम्हारा ये सिनेमा में आप काम करते हो, आप ड्रेस बनाते हो, तो ड्रेस बनाते हो तो वो दर्जी से बैठा रखे, तो लड़कियां हैं कि लड़के? हाँ, लड़की, लड़के, लड़के। और कटिंग मास्टर बोलिए, और रसोईया आता है ना खाना बनाने के लिए, लड़कियां होती कि लड़के होते बोलिए? पुरुष। हाँ, कटिंग मास्टर पुरुष है, खाना बनाने वाला पुरुष है, संगीताचार्य सारे पुरुष हैं, एमएस को भारत रत्न मिल गया, उनके चेला कौन है? ये लता माई के कितना भारत रत्न मिल गया, चेले कोई नहीं है, क्योंकि वो भीतर ही भीतर सृजन करते हैं, उनका बाहर सृजन नहीं होता है। ये बहुत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि देखिए, आप इतने सारे नृत्य आचार्य हैं, सारे पुरुष हैं। ओ महापात्र केलुचरण महापात्र जी बताइए, बड़े बड़े लोग हैं, तो सारे नृत्य के शिक्षक पुरुष हैं, संगीत के शिक्षक पुरुष हैं, रसोई बनाने वाले पुरुष हैं, चित्रकार सारे पुरुष हैं, ये माली गजरा बनाने वाले सारे पुरुष हैं, वो सब स्त्रियों की कला के आचार्य पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि उनका सृजन बाहर होता है, महिलाओं का भीतर होता है, और जो भीतर जो सृजन होता है उस समय में जब सृजन हो जाए तो उसकी चेतना एक अलग हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ में रहती है, वो महिला है, उसके रूप में निखार आता है। जब गर्भ में वो, उसका चलना अलग होता है, उनका बोलना अलग होता है, उनकी रुचियां अलग होती है, उनकी प्रकृति का एक पूरा भेद हो जाता है। ध्यान रहे कि सृजन जब निकटतम है, जहां से उसकी प्रतीति हो सकती है, एक साधु सृजन छोड़कर के मुर्दे की भाने जीत लगता है। जब साधु भी रहे ना, प्रवचन करता हो, मुर्दा के मापक रहे तो नहीं चलेगा। अरे परमात्मा की मौजूदगी है, परमात्मा की मौजूद के बिना सृजन संभव नहीं है। ध्यान रहना, जितना सृजनात्मक क्षण हो उसकी निकटता सामीप्य इतनी होती है, जितने विध्वंस के क्षण हो परमात्मा उतना उनसे दूर है। परमात्मा का स्वरूप सृजन है, और विध्वंस जो है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा उससे दूर रहता है। द मोर यू आर काइंड, मोर यू आर कटसियस, जितने आप अधिक विनम्र बनेंगे, आपसे भले बनेंगे, भला करेंगे, आपके हृदय के अंदर में करुणा रहेगी, आप परमात्मा के निकट रहेंगे। किंतु जितने आप क्रूर होते चले जाएंगे, जितने आप के भीतर एक दुष्ट पैदा उत्पन्न होता चला जाएगा, उतना परमात्मा आपसे दूर। लेकिन ना समझे लोगों का हिसाब रखना मुश्किल है, बहुत जरूरी बात है। देखिए कि परमात्मा की जो गहनतम प्रतीति है सृजन के क्षण में होती है, क्योंकि उसके बिना सृजन संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मौजूद, सृजन के लिए मेरी मौजूदगी पर्याप्त है। अर्जुन, मेरी उपस्थिति मात्र से प्रकृति सर्व जगत को रच लेती है और ऊपर कहे हुए कारण से जगत बनता है और बिखरता है। हम कहेंगे कि ये गॉड इज द क्रिएटर, ऐसा ईश्वर ही सृष्टा है। बेहतर हम कहेंगे कि गॉड इज द क्रिएटिविटी, वो परमात्मा सृष्टा नहीं, परमात्मा स्वयं सृजन है, वो खुद ही बना हुआ है। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, ये जो कुछ भी, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिस्थित सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। यच्च किंचित जगत सर्वम, जगत में जो कुछ भी दिखने को आता है। आपकी सभा अलग क्यों चल रही है धैर्य बाड़ा बेन? तीनों अलग बैठो, ये बहुत जरूरी बात कि हम जो कार्य कर रहे हैं परमात्मा का सृजन, कि उस परमात्मा की सृजन की क्षमता में उनकी उपस्थिति, जहां जन्म हो रहा है वहां मौन होकर के बैठ जाना, परमात्मा निकट है। जहां कली खिल रही है, हमारा दुर्भाग्य है कि कली को देख करके तोड़ करके हम मंदिर में भागते हैं, अरे वो परमात्मा उधर था, उसको देखा नहीं। हमारे आश्रम में एक सन्यासिनी माताजी रही, वो हॉलैंड की थी और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी के किसी बंगाली सज्जन से उनका विवाह हुआ था। उनकी मृत्यु हो गई पति की। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, वो यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर थे, उनकी हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी से दोस्ती थी। उन्होंने उस महिला को हमारे यहां भेज दिया। वो बहुत अच्छी चित्रकार थी, कवित्री भी थी। वो स्वयं बंगाली नहीं थी, नमे बंगाली, किंतु हम दोनों मिले तो बंगाली में बोलने का हमें बड़ा आनंद था। एक दिन मुझसे कहती है, स्वामी जी ऐशो ऐशो, एकदम कहते उसको सुंदर, कहते सुंदर, स्वामी जी ऐशो ऐशो ऐशो, इतना हड़बड़ा के बोल रही है, स्वामी जी आइए आइए देखिए कितना सुंदर है। अब शिवानंद आश्रम ऋषिकेश पूरा ऐसे पहाड़ पर है, सीढ़ियां चढ़ करके जाना पड़ता है 160। तो ये बारिश के दिनों में जो गायें होती हैं वो कच्चा घास खा लेती हैं, तो उनका गोबर पतला हो जाता है। वो उड़िया भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सागे मलवृद्धि। जब कब्ज ज्यादा हो जाए तो ये पालक की भाजी है, तांदलजा भाजी है, मेथी की भाजी है, मूली के पत्ते हैं, वो पत्ते पत्तों की सब्जी खाओ तो पेट खुल जाएगा। तो वो गाय जो है वो पहाड़ में चढ़ती है, ऐसे सीढ़ियां भी चढ़ती है। तो एक गाय सीढ़ी चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ने के समय में चिक चिक गोबर भी कर रही है, वो पतला गोबर है, हर सीढ़ी में गिरने के समय नया पैटर्न बनाता है। को तो सुंदर, इतना दूर से मेरे को दौड़ के बुलाया, देखो स्वामी जी कितना सुंदर है। वो गाय का जो गोबर गिर रहा है उसमें भी वो परमात्मा के सृजन का दर्शन कर रही है। बताओ हम कहां मंदिर दौड़े जा रहे हैं, एक कली खिल रही है, जब कली खिलती है तो वहां परमात्मा की उपस्थिति अगर ना हो तो कली खिल नहीं सकती है। हम क्या करते हैं, सवेरे सवेरे मंगलाना दर्शन करवाने जब उच्च है। मंगलाना दर्शन करना बुरा नहीं है, किंतु मंगला के दर्शन के समय वो जो सूर्य है पूर्वांचल से बाहर आ रहा है, तो वो सूर्य का जब प्रागट्य हो रहा है उस समय समग्र वातावरण में परमात्मा की जो उपस्थिति है उस उपस्थिति की अनुभूति करे। अरे वो कहां तुम जा रहे हो भाग करके दौड़ करके, एक सुंदर है ये ओस, ओस जो होती है ओस, वो हरे घास के ऊपर गिरती है, वो जो घास है उसके ऊपर ओस, सूर्य आएगा, सूर्य आकर के ओस को उड़ाता है, उड़ाने दो, किंतु वो जितने क्षण तक ओस रहती है सवेरे उठने के बाद में देखना उस ओस के हर बिंदु के अंदर में वो फूल खिला हुआ है, फूल के पत्तियों के ऊपर ओस गिरी हुई है, वो गुलाब भी हो न डेलिया हो न चंपा हो, किसी के ऊपर भी ओस का बिंदु, उस ओस के बिंदु को देखना, स्पर्श नहीं करना, वो बहुत कोमल है परमात्मा को। ये हनुमान जी के पास जाते लोग पीछे हाथ रख करके प्रणाम करते, क्यों? कहीं हम स्पर्श हमारा ना हो जाए, ये ब्रह्मचारी है, हमको करंट लग जाएगा। अरे उस को भी नहीं छूना, वो परमात्मा है, उसका अत्यंत अतीव रोचक सौंदर्य है। क्या कहा है? तुषार हार धवला। वो जो तुषार हार है, यही तुषार है जिसके अंदर में परमात्मा आपका बैठा हुआ है। किंतु हमारी मुश्किल क्या है? हम बड़े होते हैं तो पूछते परमात्मा कहां है। देखिए, अभी कुछ दिन के पहले जापान में एक सर्वे हुआ, 10 लाख बच्चों ने पूछा ये खेत क्या होता है, और इंग्लैंड का भी यही हाल, 5 लाख से अधिक बच्चों ने जापान में भी और इंग्लैंड में भी कहा कि गाय हमने देखी नहीं है। न बच्चों ने खेत देखे हैं, न बच्चों ने गाय देखी है। अभी वो खेत कहां देखते हैं? वो टेलीविजन में एक चैनल आती है ना, डिस्कवरी, तो बाद में वो गाय भी डिस्कवरी में देखेंगे और खेत भी डिस्कवरी में देखेंगे। तो परमात्मा के लिए तो प्रश्न ही बड़ा मुश्किल है कि परमात्मा कहां है, कौन है, बताओ। तो परमात्मा को तो डिस्कवरी में दिखा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा को तो कैमरे में पकड़ा नहीं जा सकता है। तो जिन बच्चों ने गाय नहीं देखी, जिन बच्चों ने खेत नहीं देखा, वो परमात्मा के बारे में प्रश्न करे तो कभी बुरा नहीं लगना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बच्चों के माता पिता तक को पता नहीं होता है कि श्री राम जी की मां है वो जगदम्बा कौशल्या अम्मा थे कि सुमित्रा अम्बा थे कि कई कई अम्बा थे। तो लोगों को आज हमारे विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय लोग हैं, दिन रात क्या करते हैं, अपने बच्चों को सनातन धर्म की जो मंदिर होते हैं वहां भेजते हैं। क्यों? बोलते कि हमारे माता पिता जब यहां आए थे दिन रात पैसा कमाने में लगे हुए थे, इन्होंने हमको पढ़ाया नहीं, भारतीय संस्कृति बताई नहीं, हमें ढेला नहीं पता है कि कृष्ण है, उनका जन्म मथुरा में हुआ था कि कृष्ण का गोकुल में हुआ था, द्वारका और गोकुल का क्या संबंध है, वी डोंट नो स्वामी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। तो आप बताना चाहिए कि कर्ण है तो वो कैसे हुआ था, ये महाभारत कैसे हुई थी। अच्छा है, धन्यवाद ये सिनेमा बताने वाले, ओ गणेश के सिनेमा आई लव माई गणेश और आई लव माई हनुमान, तो लोगों को अभी बच्चों को हनुमान और गणेश से दोस्ती होने लगी। नहीं तो गणेश जी दूध पी रहे हैं तो उनमें बच्चों का कोई नहीं हो सकता था, गणेश जी कहां से दूध। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वाभाविक ये जो कविता लिखती है, देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना, तो उनको कहो कि आप एक कविता लिखिए, तो वो कविता किस पर लिखेंगे? जो अब तक कवि हुए उन्होंने सूर्य उदय पर कविता लिखी, सूर्य अस्त पर लिखी, चांद पर लिखी, तारों में लिखी, पहाड़ों में लिखी, कृष्ण में लिखी, कृष्ण की लीलाओं में लिखी। अब बच्चों को बोलो कि आप कोई कविता लिखो तो वो इंजिन पर लिखेंगे, बोलो चुक 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 इंजिन पर, हवाई जहाज में लिखेंगे, नहीं तो फैंटम में लिखेंगे, क्योंकि उनके सामने उनको सूर्य उदय ही पता नहीं है, सूर्य अस्त ही पता नहीं है, कमल पुष्प पता नहीं है, उनको तो ये हमारे तितलियों के रंग पता नहीं है, भवरों के गुंजन पता नहीं है, उन्होंने खेत नहीं देखी, ओस नहीं देखी, तो वो कविता लिखेगा क्या जो कुदरत से कट गया है, परमात्मा से हट गया है। आपका सृजन क्या है? आपका सृजन स्थूल है, परमात्मा का है वह सूक्ष्मनीय सूक्ष्मापि सूक्ष्म, और स्थूल जो है जो यद दृश्य तद नृश्य, वो सब नाश होने वाला है। तो हमारी चेतना है वो पूरी नाश होने में लगी हुई है। एक ध्यान दे, ईश्वर को जो इनकार करने लगते हैं वो अज्ञानी नहीं है, उनका दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर में झांका ही नहीं है। हम बाहर देख रहे हैं पड़ोसी क्या कर रहा है, ये झाड़ू क्यों ऐसे लगा रहा है, झाड़ू क्यों टेढ़ी रखी है, वो उसको क्यों सीधा नहीं किया है, हम बाहर ही घूम रहे, कभी अपने साथ अपने भीतर बैठने का हमने कभी कोशिश नहीं की। इसलिए छोटा बच्चा जो है वो पूछता है पापा पापा ईश्वर है कि नहीं है, प्रश्न ईश्वर है कि नहीं है, तो बोल देते हैं है। पापा पापा आपने देखा है, चुप रहे तेरा होमवर्क कर, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बच्चे के प्रति पिता के पास में हिम्मत नहीं है बोलने की, बेटा ईश्वर है, संतों ने देखा है, देखा था, किंतु मुझे इसके बारे में कुछ विशेष पता नहीं, बहुत जरूरी बात है। नहीं, 10 साल के पहले जब हम ये सॉल्ट लेक सिटी में गए तो वहां कुछ डॉक्टर लोगों का एक समूह बन रहा है, वेदांत पढ़ता है। उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो श्वेता स्वतर उपनिषद हैं वो पढ़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, क्यों? मैंने कहा मैंने अपने ढंग से पढ़ा हूं, दूसरों को पढ़ाने की क्षमता मुझ में नहीं है, काफी साल पहले की बात है। तो बोले ओह वी डोंट बिलीव, भारत से आने वाले आप पहले महात्मा हैं जो कहते हैं कि आई डोंट नो। तो गलत क्या हुआ? ये हमारे विद्यार्थी हैं। तो हम विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं तो ये बात पढ़ाते हैं कि शिक्षक का धर्म क्या है। शिक्षक का धर्म यह है कभी कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछे, अगर आपको उसका उत्तर पता नहीं है तो बोलना मुझे पता नहीं है, मैं पता करके कल तुम्हें बता दूंगा। कभी गप नहीं लड़ाना। एक बार गप लड़ा दिया तो जो बच्चे हैं उनको पता हो जाएगा कि दे आर ब्लफिंग मी, उनकी हमारे में श्रद्धा छूट जाएगी। आज गुरुजन लोग बोलते हैं कि हमारे विद्यार्थी हमारा सम्मान क्यों नहीं करते। हम एक दो तीन चार कक्षा पढ़े थे तो उन दिनों में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने हमको घड़ी देखना सिखाया था। वो प्रिंसिपल अभी भी जिंदा है सर, 90 ऊपर इनकी आयु। उनके गांव में हम गए तो अभी भी उनके घर में जाकर के दंडवत प्रणाम करके आते क्योंकि उन्होंने हमको घड़ी देखना सिखाया है। घड़ी टाइम का बता रही है कि पूरा हो जाए। हाँ। तो घड़ी देखना सिखाया। हम ऋणी हैं, हमारे में कोई और गुण हो ना हो किंतु समय में आना, समय में चलना, समय में काम पूरा करना, तो ये गुरु हैं। तो उनको हम गुरुजन के समान श्रद्धा भक्ति से क्यों नहीं देखते? उनमें गुरु तो रहा कहां है? वो अपने शिष्य के प्रति मैं ये सिलेबस पूरा करने वाला नहीं किंतु मैं भावी भारत के एक युवान को एक नागरिक को तैयार कर रहा हूं, उस भावना से अगर वो डालते थे, उनके भीतर में परमात्मा का वो आह्वान करके जैसे ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया है ऐसे करते थे तो वो अवश्य हो सकता था। यहां वाणी को विराम करते हैं, शाम को स्थित प्रज्ञ के लिए ठीक 6 से 7:30 बजे तक मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।